आवाज़ सुनने वाले तमाम आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों को जॉनी रावत का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आजकल का सारा माहौल जो है संगीतमय हो चुका है। यहाँ तक मैंने देखा है कि इंसान आज के दौर में उठता भी संगीत में है, सोता संगीत में है, चलता भी संगीत में है और घूमता भी संगीत में है। क्या करें, संगीत का ज़माना जो है, और वैसे भी आज के ज़माने में इंसान खाना छोड़ सकता है लेकिन गाना नहीं छोड़ सकता। मैंने देखा है यहाँ तक, एक इंसान को देखा मैंने, उसे गाने का बड़ा शौक़ था, बाद बाद पर गाने गाता था। आप कुछ पूछिए तो आपके हर सवाल को संगीत में बताता था। एक दिन मैं उनके घर गया, खटिए पे बैठे थे, बीवी को देखकर वो गाना गा रहा था।
मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया हिला दूंगा।
बीवी को बड़ा गुस्सा आया, गुस्से में बोली,
छोड़ो जी, एक खटिया तो हिला नहीं सकते, दुनिया क्या खाक हिलाओगे।
वैसे मेरा एक दोस्त है, हमारी तरह कलाकार है। एक दिन उसकी शादी हुई और शादी की रात को ही उसे कहीं प्रोग्राम के लिए जाना पड़ा। अब वो चला गया और एक साल के बाद घर लौट आया। घर लौटते उसने देखा कि उसकी बीवी जो है पेट से थी। पूछना चाहा, कलाकार थे, संगीत में पूछा, किस तरह से पूछा,
ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, बोलो कुछ तो बोलो।
बीवी भी कलाकार थी, हाजिर जवाब थी। बीवी ने जवाब दिया,
यूं ही कोई मिल गया था सर राह चलते चलते।
वैसे मैंने एक भंगार वाले को देखा, जो गली में घुसता था तो संगीत में ही आवाज लगाता था, किस तरह से, देखिए,
तू 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 तारा डिब्बा बटली भंगार वाला।
गली की जितनी औरतें होती थी सब बाहर आ जाती थी। वैसे एक साहब को मैंने देखा, उनका बाप मर रहा था और वो केमिस्ट की दुकान पर पहुंचे कुछ दवाई खरीदने के लिए, तो केमिस्ट वाले से वो संगीत में बात कर रहे हैं। देखिए वो किस तरह से बोले,
दवा है बैद्यनाथ की दवा है, जल्दी दे दो मुझे तुम, मेरा बाप मर रहा है, दवा दे दवा है।
केमिस्ट ने हाजमी की गोली दे दी, रात भर बाप को तकलीफ। वैसे दोस्तों, एक नाम है जो आजकल सुनने में आया है और जिसने बहुत धूम मचाई है, जिनका नाम है बाबा सैगल। इनका नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ये कुंदन लाल सैगल के कोई रिश्तेदार होंगे, मगर जब इनकी आवाज़, इनके गीत मैंने सुने तब मैंने सोच लिया कि अच्छा हुआ जो कुंदन लाल सैगल आज नहीं है, वरना इनके गीत सुनते तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये गाते ऐसे हैं ऐसे लगता है कि मारा मारी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। अब मैंने पूछा इसे क्या कहते हैं, तो लोगों ने बताया कि ये रैप सॉन्ग है। जब मैंने इसे सुना तब मैंने समझ लिया कि ये रैप सॉन्ग नहीं है, ये किसी सॉन्ग का रैप हो रहा है। देखिए, बाबा सैगल एक दिन किसी चाट वाले के ठेले पर पहुंचे और चाट वाले से कहा कि मैं बाबा सैगल हूं, मुझे कुछ खिलाओ, पूरी, सेव पूरी, पाने पूरी, कुछ अच्छा मीठा, कुछ तीखा खिलाओ। भेलपुरी वाले ने सोचा, बाबा सैगल पहली दफ़ा मेरी दुकान पर आया है, मेरे ठेले पर आया है, इसे कुछ अच्छा बना के खिलाना चाहिए। उसने इतना तीखा खिला दिया कि बाबा सैगल के मुँह में आग लग गई, पूरा बदन जलने लग गया और बाबा सैगल चटपटाहट के मारे ठेले वाले से क्या बोले, सुनिए।
चट वाले चट वाले चट वाले चट वाले बोला तुझे मीठा बना मीठा बना मीठा बना, तू नहीं माना, तूने दिया मुझे तीखा बना तीखा बना तीखा बना तीखा बना तीखा। चट वाले चट वाले चट वाले चट, मुंह भी जलाया मेरा, दांत भी जलाया तू, आंख भी जलाई मेरी, दिल भी जलाया तू, हाथ भी जलाया मेरा, पांव भी जलाया तू, ये भी जलाया मेरा, वो भी जलाया तू, ये भी जलाया मेरा, वो भी जलाया तू, आ ई ओ ए। चट वाले चट वाले चट वाले चट वाले चाट खिला दे मुझे भेल खिला दे मुझे शेव खिला दे मुझे पूरी खिला दे मीठा खिला दे जरा मीठा पिला दे मुझे मीठा खिला दे जरा मीठा पिला दे मुझे कुछ तो खिला दे मुझे कुछ तो पिला दे मुझे कुछ तो खिला दे मुझे कुछ तो पिला दे या फिर ठंडा ठंडा पानी ठंडा ठंडा पानी।
ठेले वाला बोला पानी पिला पिला के तो पूरा दुनिया को पागल कर दिया रहा, कितना ठंडा पानी पिएगा ये ले। पूरी सामने रखी हुई बल्टी थी पानी की सारी उसके सर पे डाल दी। वैसे आजकल एक गीत बज रहा है, इस गीत ने पूरे हिंदुस्तान में हर एक को पागल कर दिया है, और वो गीत है चोली के पीछे क्या है चुनरी के नीचे क्या है। ये गीत जो है, इस गीत ने हर एक को दीवाना बना दिया है, हर कोई इस गाने का पागल हो गया है। जिसे देखो वो इसी गाने में बात करता है। मैंने तो हाल में देखा कि एक भाई अपने बहन से कह रहा था,
दीदी दीदी चोली के पीछे क्या है,
पता ही नहीं चलता क्या है ये गाना है। और वैसे में खासकर इस गाने ने महिलाओं पर ज़्यादा असर किया है। मैंने देखा दो औरतें सब्जी मंडी पहुँची, बाज़ार में गईं। बाज़ार में जाने के बाद सामने बैठा था भाजी बेचने के लिए भैया जी हमारे, उन्होंने भैया जी से चोली से किस तरह से भाव पूछा, और भैया जी भी चोली के पूरी तरह से दीवाने थे, चोली के गाने के पूरी तरह से पागल हो चुके थे, पूरा भूत उनके सर में बैठ चुका था। और भैया जी ने उन्हीं की गीत में उन्हीं को जवाब किस तरह से दिया, देखिए चोली के पीछे क्या है।
पूछ 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 बैंगन का भाव क्या है, आलू का भाव क्या है, गोभी का भाव क्या है, दूधी का भाव क्या है। बैंगन 2 रुपया किलो, आलू 3 रुपया किलो, गोभी 4 रुपया किलो, दूधी 5 रुपया किलो। क्या क्या मैं दूरी तुझको बोल तू बोल तू।
महंगा है
फुट 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 फुट।
वैसे कोई भी गीत बजता है तो वो गीत हर किसी की ज़ुबान में बैठ जाता है, और हर इंसान उसी गीत को बार बार दोहराता है। लेकिन हाल ही में एक गीत हमने सुना, गाने के बोल कुछ खल्ली वल्ली इस तरह के हैं, और ये गीत मैंने जब सुना तो मैंने अपने दोस्त को देखा, उसे ये भूत लग गया, वो पागल हो गया इस गीत का। वो जब भी रास्ते पर मिलता था तो एक ही बात करता था,
खल्ली वल्ली।
मैंने पूछा ये खल्ली वल्ली क्या है,
उसने बोला कुछ नहीं खल्ली वल्ली।
एक दिन उसे मार लग गई, उसका सर टूट गया, उसकी टांग टूट गई, उसके हाथ पांव से खून बहने लगा। डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ, तो बोला
खल्ली वल्ली हो गया।
बोले खल्ली वल्ली, खल्ली वल्ली मतलब क्या,
बोले बोल दिया खल्ली वल्ली।
डॉक्टर साहब ने कहा सीधे बता वरना एक चांटा मारूंगा। तो उसने उसी गीत में डॉक्टर साहब को किस तरह से जवाब दिया, देखिए खल्ली वल्ली।
जा रहा था मैं काम से कहीं, जा रहा था मैं काम से कहीं, चांदी वाली बोरी वाली कांदे वाली, हाय बोरी वाली कांदे वाली चांदी वाली। अरे मगर तुम्हारी हड्डी टूटी कैसे, तुम्हारे पैरों से तो खून बह रहा है, सारा डिपार्टमेंट ढीला हो चुका है, ये मार लगी कैसे कुछ तो बोलो। ससरे ने मुझे भेजा लाने के लिए गाड़ी, साली ने मेरी भेजा लेने के लिए साड़ी, साले ने मेरे भेजा लेने के लिए काजी, बीवी ने मेरी भेजा लाने के लिए भाजी। गिर गया राह में टूटी हड्डी, गिर गया राह में टूटी हड्डी, टूटी मेरी हड्डी पसली हड्डी पसली, हाय टूटी मेरी हड्डी पसली हड्डी पसली, हाय खली बली खली बली खली बली, हाय खली बली खली बली खली बली, हाय खली बली खली बली खली बली, हाय खली बली खली बली खली बली।
ये तो थे नए जमाने के गीत, नए गानों का अंदाज जिसे आप लोगों ने देखा सुना। वैसे बरसों पहले रफ़ी साहब ने एक गीत गाया था, गाने के बोल थे लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी। ये गीत शम्मी कपूर साहब पर फरमाया गया गीत था, लेकिन इसी गीत को अगर अलग अलग कौम के लोग अलग अलग कैरेक्टर्स गाएंगे तो किस तरह से गाते हैं। सबसे पहले देखिए रफ़ी साहब ने इस गीत को किस तरह से गाया था, रफ़ी साहब का एक छोटा सा अंदाज। रफ़ी साहब,
लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए हैं, हम दिल से गए, हम जा से गए, बस आँख मिली और बात बड़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी।
इसी गीत को अगर हमारे भैया जी गाएंगे, यूपी के सज्जन, तो किस तरह से गाते हैं देखिए। ठंडी का मौसम है, दूध देने के लिए जा रहे हैं साइकिल पर बैठकर, और ठंड लग रही है, और ठंडी के मारे वो इसी गीत को गाते हैं। किस तरह से भैया जी,
अरे लाल छड़ी मैदान खड़ी, का खूब लड़ी का खूब लड़ी, अरे लाल छड़ी मैदान खड़ी, का खूब लड़ी का खूब लड़ी, हम दिल से गए और जान से गए, का बात बड़ी का बात बड़ी, अरे सारा रा 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 कच्चा गाच।
अगर इसी गीत को गाने के लिए हमारे गुजराती भाई को खड़ा कर दिया जाए तो किस तरह से गाते हैं। गरबा खेलते खेलते आते हैं और गरबा खेलते खेलते जाते हैं गुजराती। वैसे आप लोग जानते हैं हमारे बंबई में या महाराष्ट्र के कोने कोने में इनकी छोटी छोटी दुकान होती है जो गन्ने का रस निकालते हैं और लोगों को पिलाते हैं। वो गन्ने का रस भी निकालते हैं और साथ साथ इस गाने का रस कैसे निकालेंगे देखिए। गन्ने का रस निकालने वाले
लाल छेड़ी गलाल कांडे गहा, लाल छेड़ी गलाल छेड़ी गलाल कांडे गहा, हम दिल से गए या न जा से गए या न बात बड़े या न बात बड़े, हा लाल छेड़ी लाल छेड़ी ग साजन साजन ग अग साजन
हर त्यौहार में हम अपनी रीति रिवाज के मुताबिक हम चलते हैं। वैसे मैंने देखा कि कुछ हिंजड़े होली के दिन राजकुमार साहब के बंगले पर पहुँचे, और राजकुमार साहब के बंगले पर पहुँचने के बाद राजकुमार साहब के दरवाजे की घंटी बजाई और गाने लगे,
हाय हाय अरे तोता मेरे तोता मैं तो होली खेलूंगी, अरे राजकुमार दरवाजा खोल रे मैं भी तेरे रंगों मेरे भीगूंगी, हाय हाय मफलर दरवाजा खोल।
राजकुमार साहब की घंटी बजाते ही राजकुमार साहब ने दरवाजा खोला और गुस्से में बोले,
यानी हमने पूछा घंटी किसने बजाई।
दोनों जो हिंजड़े आए थे घबरा गए, क्योंकि राजकुमार साहब का जो लिबास था चेहरे का तेज सा देखकर घबरा गए। फिर राजकुमार साहब ने पूछा,
हमने पूछा जानी घंटी किसने बजाई? हाय हाय राजकुमार, घंटी हमने बजाई रे। यानी तुमने घंटी बजाई? याद रहे, जिनके अपने घंटे नहीं होते वो दूसरों की घंटियां नहीं बजाते।
वैसे हम लोग जानते हैं हमारे देश में अलग अलग कौम के लोग, अलग अलग जात के लोग रहते हैं। मैंने देखा कि हमारे राजस्थानी जिन्हें हम देखते हैं और वो अपने हाथ के कंगन को पौंछी कहते हैं। एक साहब ने अपने गांव से अपनी बीवी को पौंछी भेजी और फ़ोन करके बीवी से किस तरह से पूछा, देखिए। बोले,
हेलो प्राणेश्वरी, मैंने जो पौंछी पहुँचाई थी पौंछी पहुँची कि नहीं पहुँची? मैंने जो पौंछी पहुँचाई थी पौंछी पहुँची कि नहीं पहुँची?
बीवी हाजिर जवाब थी। बीवी ने जवाब दिया,
प्राणनाथ, आपने जो पौंछी पहुँचाई थी पौंछी पहुँचने के पहले मैं यहाँ पौंछी पहुँची न जाने कहाँ पहुँची।
वैसे दोस्तों, कर्फ्यू जब बम्बई में नया नया आया था, किसी को पता नहीं था कि कर्फ्यू होता क्या है। उस वक्त पत्नी अपने पति से कहती थी,
ए जी चलो ना बाजार जाकर कर्फ्यू देख कर आए।
पति को मालूम नहीं होता था कर्फ्यू क्या है, उसे लगता था कोई शॉपिंग का नया नाम है। वो अपनी बीवी के साथ मार्केट में निकलता था, दोनों को मार पड़ती थी तब मालूम पड़ता था कि इसे कर्फ्यू कहते हैं। वैसे हमारी सरकार कहती है कि आबादी कम करो, बच्चे कम पैदा करो, मगर मैं ऐसे कहता हूँ कि 1.5-2 महीने तक तो लगातार कर्फ्यू लगा था, लोग सभी घर ही में बैठे थे, आबादी क्या खाक कम पैदा होगी। वैसे आप लोग जानते हैं कर्फ्यू के माहौल में बहुत सारा नुकसान पहुँचा लोगों को, कितने लोग उखड़ गए, कितने मर गए। आए दिन हमारे बम्बई शहर में कर्फ्यू कर्फ्यू और कर्फ्यू यही सुनने को मिलता था। इतने में कुछ लोग मैंने देखे कि मैयत लेके जा रहे थे, अचानक पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और रोकते ही बोला,
ए रुक,
ये क्या है, क्या नाटक है, कहाँ जा रहे हो?
बोले साहब मेरा बाप मर गया, उसको जलाने ले जा रहे हैं।
बोले बाप मर गया, मालूम नहीं आज कर्फ्यू है?
बोले साहब आपको मालूम है कर्फ्यू है, मुझे भी मालूम है कर्फ्यू है, मेरे मरने वाले बाप को थोड़ी मालूम था कि आज कर्फ्यू है।
ऐसे ही एक दिन किष्ट मुखर्जी साहब बगैर कपड़े पहने अपने घर की नुक्कड़ के बाहर खड़े थे रात के 2 बजे। उन्हें पता नहीं था कि बाहर कर्फ्यू है और गाना गा रहे थे, चिल्ला रहे थे,
अरे बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो।
अचानक हवलदार साहब ने देख लिया, आते ही उन्हें डंडा मार दिया,
बेवकूफ, रात के 2 बजे बगैर कपड़े पहने शराब की हालत में धुत यहाँ गाना गा रहे हो, मालूम नहीं आज कर्फ्यू है, चलो पुलिस स्टेशन।
हवलदार साहब एक मिनट, ये कर्फ्यू होता क्या है?
बेवकूफ, कर्फ्यू मालूम नहीं? रात बेरात दंगा करते हो, शराब पीते हो, चलो पुलिस स्टेशन, तुम लोगों को अंदर लेके जाके मारना चाहिए, चलो मेरे साथ।
हवलदार साहब एक मिनट, मेरे बदन पर कपड़े नहीं है, मैं घर के अंदर जाता हूँ, कपड़े पहन के आता हूँ, फिर आप जिधर लेके जाएंगे मैं आ जाऊँगा, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आधे घंटे में आता हूँ।
किष्ट मुखर्जी साहब अपने घर के अंदर घुसे, बाहर नहीं निकले। हवलदार साहब सोचने लगे, यार ये आदमी आ क्यों नहीं रहा है? किष्ट जी के घर की तरफ वो बढ़े और किष्ट मुखर्जी साहब के घर का दरवाजा खटखटाया,
कौन? अरे कौन?
अरे बाहर निकल,
ये पागल हो गया क्या, मालूम नहीं क्या बाहर कर्फ्यू है?
अभी अभी कर्फ्यू का माहौल खत्म नहीं हुआ था कि अचानक कहीं से बम का माहौल पैदा हो गया। आए दिन बम फूटने लगे, लोग मरने लगे, डरने लगे, उखड़ने लगे, और पता चलता था कि फला जगह पे फला आदमी मर गया, यहाँ कुछ नुकसान हुआ, वहाँ गाड़ियाँ जल गई, ये हुआ वो हुआ, और आए दिन हर इंसान के चेहरे पर एक खौफ सा देखने को मिलता था। हर इंसान एक दूसरे को देखता था तो डरता था। पहले हम एक दूसरे को मिलते थे तो पूछते थे, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, अच्छा अच्छा। अब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो कहते हैं,
कहाँ बम फूटा, कितने मरे, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना, हैं?
ऐसे पूछते हैं। लेकिन आजकल पति अपनी पत्नी को ऑफिस जाने से पहले कहता है,
अपनी मांग का सिंदूर मिठा के रख दो। पत्नी कहती,
क्यों?
पता नहीं वापस जिंदा आऊंगा या नहीं, आ गया तो ठीक है, नहीं तो बगल वाले से, पड़ोसी से, किसी से अपनी मांग भरा लेना।
यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं तो हमने देखा कि बिल्डिंगें उड़ गईं, कहीं कहीं देखा तो बहुत सारे स्कूटर्स, कुछ गाड़ियाँ उड़ गईं। एक जगह पे देखा कि इतनी भीड़ थी, इतने लोग इकट्ठा थे कि वहाँ पर बिल्डिंग टूट चुकी थी, पूरी तरह बिखर चुकी थी, लोग, औरतें रो रही थीं, बर्तन वगैरह गिरे थे, कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अचानक कहीं से एक आदमी आ गया, टपोरी किस्म का, उसने पूछा,
लगता है बम फूटा इधर, बहुत जन मर गए लगता है।
सामने वाले से पूछा,
क्या भाई बम फूटा क्या, क्या रस्सी बम था क्या, क्या टाइम बम था, रिमोट कंट्रोल से उड़ाला दिखता है, चार पांच बिल्डिंग एक साथ गिरे लिए, क्या हुआ क्या, कितना बड़ा बम था।
उस आदमी ने कहा, पागल बम नहीं फूटा।
बम नहीं फूटा, फिर ये क्या हुआ।
वो म्यूनसिपालिटी वाले आए थे, बिल्डिंग गैर कानूनी थी, तोड़कर चले गए।
वैसे आजकल की फिल्में हम लोग देखते हैं, जिनके नाम सुनते वक्त ऐसे लगता है कि ये फिल्मों के नाम नहीं हैं, बल्कि यूं लग रहा है कि कोई गुंडा भरे रास्ते में किसी को गालियां दे रहा है, किसी को धमकी दे रहा है, जैसे जिंदा जला दूंगा, आग लगा दूंगा, घर तोड़ दूंगा, दांत तोड़ दूंगा, भागो भागो भूत आया, दिल दरिया में फेंक दिया, जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब बंदर। ये सारे फिल्मों के नाम हैं, और इन फिल्मों के नाम सुनते वक्त ऐसे लगता है कि कोई गुंडा रास्ते पर दंगा कर रहा है। और इनके गाने भी बड़े अजीबोगरीब हैं, देखिए, चुम्मा चुम्मा दे दे, चोली के पीछे क्या है, दम्मा दम्मा ले ले, ये गाने हैं। ऐसे ही कुछ गाने मैंने चुने हैं और चंद फिल्मी सितारों की आवाज़ों में ढालकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वैसे एक गीत बजा था, गाने के बोल थे, धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। अगर इसी गीत को हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बुज़ुर्ग कलाकार अशोक कुमार साहब बोलते तो किस तरह से बोलेंगे। अशोक कुमार,
अरे क्या पकड़े हो तुम, अरे क्या कह रहे हो तुम बेटे, तुमने ज़िंदगी में देखा है क्या, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है और थोड़ा सा सड़ना है। धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। मुझे प्यार है तुमसे कितना जाने जाना, जाते समय पान पराग का डिब्बा भी लाना।
और एक कलाकार हैं जो आज के ज़माने के फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हरबन मौला कलाकार हैं, शक्ति कपूर। वो कहते हैं, खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या परी है, शक्ति कपूर।
आओ अबे डाकन क्या है, मेरा नाम है शक्ति, मैं करता हूँ लड़कियों की भक्ति, आओ ललिता तू मेरे लिए क्यों नहीं रुकती, आओ धतुर है खंबे जैसी खड़ी है लड़की है कि परी है, आंखों में गुस्सा है, होठों पे गाली है, तू मेरी साली है, मेरा नाम शक्ति है, आओ। कैसा लगा मेरा डायलॉग।
और एक कलाकार हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश। वो कहते हैं, कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, किस तरह से बोलेंगे ओम प्रकाश।
भैया जय हो भगवान की लीला, परमेश्वर की कृपा है आप सबके। भैया कबूतर चला जा, अगर मेरी बीवी ने देख लिया तो झाड़ू का मार खाएगा, चला जा, मेरे पहले प्यार की चिट्ठी मेरी दूसरी बीवी को दे क्या।
हमारे बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मेरे बगल में एक लड़की बैठा करती थी जिसका नाम था कुंदा। एक दिन हमारे मास्टर जी हमारे क्लास में आए और बोले,
अच्छा अच्छा ए बेटी कुंदा तुम बड़ी होकर क्या बनोगी।
मेरे बगल में बैठी हुई कुंदा ने कहा,
सर मैं एक बच्चे की माँ बनूंगी।
अच्छा एक काफी अच्छा, ए बेटे जॉनी तुम क्या बनोगे।
मैंने भी झट से कह दिया,
सर मैं उसी बच्चे का बाप बनूंगा।
वैसे मैं बचपन से ही बड़ा शरारती था। एक दिन हमारे मास्टर जी ने मुझसे कहा,
जॉनी जाओ जाकर एक निबंध लिख कर लाओ।
मैंने कहा, मास्टर जी कैसा निबंध।
देखो ऐसा निबंध लिखो, ऐसी बात लिखो जो आज तक घटी नहीं, चमत्कार कोई चमत्कार। मैंने कहा ठीक है। मैंने लिख लिया और मास्टर जी के पास लेकर चला गया। मास्टर जी ने कहा पढ़ो। मैंने पढ़ के सुनाया,
मास्टर जी जॉनी पटरी से जा रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी ने कुक किया, जॉनी बाजू हट गया, गाड़ी चली गई।
मास्टर जी ने एक तमाचा मारा और कहा गधे ये भी कोई निबंध है, इसमें चमत्कार है, जाओ फिर से लिख कर लाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर दोबारा लिख कर गया और मास्टर जी के बाकड़े पर जाकर वो निबंध रखा। मास्टर जी ने कहा बोलो। मैंने कहा
मास्टर जी जॉनी पटरी से जा रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी, जॉनी ने कुक किया, गाड़ी बाजू हट गई, जॉनी चला गया।
वैसे दोस्तों ये तो थी हमारे बचपन की बात। आजकल के बच्चे जो हैं इतने एडवांस हो चुके हैं, इतने एडवांस हो चुके हैं कि इलू इलू बोलकर अपने बाप को उल्लू बनाते हैं। एक छोटा सा नमूना, जब मैं एक बार ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा था, अचानक मैं बचते बचाता हुआ बिल्डिंग के कोने कोने से जा रहा था, चौथे माले से एक बर्तन सीधे मेरे सिर के ऊपर आकर गिरा। मैंने ऊपर देखा तो बर्तनें पटकने की आवाज़ें आ रही थीं, नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। मैंने पूछा
बेटे क्या हो रहा है?
बच्चे ने कहा
कुछ नहीं, टाइम पास चल रहा है।
मैंने कहा टाइम पास क्या हो क्या रहा है?
मेरे मम्मी डैडी का ना झगड़ा चल रहा है।
अच्छा बेटे बताओ तुम्हारे डैडी कौन है?
क्या?
नहीं मैंने पूछा तुम्हारे डैडी कौन है?
इसी बात का तो झगड़ा चालू है।
वैसे मैंने बताया कि आजकल के बच्चे एडवांस हो चुके हैं। एक बार एक लड़का अपने बाप के साथ पहली बार मार्केट घूमने के लिए निकल पड़ा। बच्चे ने मार्केट देखा नहीं था, पहली बार मार्केट में गया, बाप बच्चे को लेकर घूम रहा था तो बच्चे की नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जिसका पेट बहुत बड़ा था। बच्चे ने पहली बार इतना बड़ा पेट देखा तो बाप से पूछा
पिताजी पिताजी वो कौन है?
पिताजी ने कहा
बेटे ये उद्योगपति है।
बेटे के जहन में बात रह गई, बेटे के दिमाग में बात रह गई कि बड़े पेट वाले उद्योगपति होते हैं। अचानक गली की एक मोड़ पर बच्चा मुड़ा अपने बाप के साथ तो देखा एक औरत जिन्हें बच्चा होने वाला था, बड़ा पेट था, तो बच्चे ने देखते ही चिल्लाना शुरू किया
पिताजी पिताजी उद्योगपति।
बाजार में जितने लोग थे मुड़कर बच्चे की तरफ देखने लगे। पिताजी ने एक झापड़ बेटे को मारा,
गधे ये उद्योगपति नहीं है।
पिताजी ये उद्योगपति नहीं है।
बेटे ये उद्योगपति नहीं है।
फिर ये क्या है?
ये पति उद्योग है।
एक बच्चे ने अपने माँ से पूछा
माँ माँ क्या परियां उड़ती हैं?
माँ ने कहा
क्या पूछा बेटे? माँ मैंने पूछा क्या परियां उड़ती हैं? हाँ बेटे परियां उड़ती हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो?
अपने पापा है ना पापा, कल अपनी नौकरानी से कह रहे थे तुम बिल्कुल परी लगती हो, फिर वो कब उड़ेगी माँ?
माँ गुस्से में बोली
देख लेना शाम तक उड़ जाएगी।
वैसे तो हम लोगों ने हर चीज में तरक्की की है, यहाँ तक इंसान तरक्की करते करते जमीन से चांद तक पहुँच चुका है, लेकिन एक चीज ऐसी है कि उसमें हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही तरक्की की है और वो है बच्चों के नामों की तरक्की। वैसे आज से 50 साल पहले हम बच्चों के लिए नाम देवी देवताओं के हिसाब से रखते थे, लड़का हुआ तो राम लक्ष्मण कृष्ण कन्हैया गोपाल, और लड़की हुई तो लड़कियों के नाम भी देवियों के नाम से रखा करते थे, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी लक्ष्मी। ऐसे नामों से धीरे धीरे तब्दीलियां हुई, तरक्कियां बढ़ती गईं, लोगों ने देवी देवताओं के नामों को कम कर दिया और अपने बच्चों को फिल्मी सितारों के नाम देने शुरू कर दिया। लड़के हुए धर्मेंद्र जितेंद्र राजेंद्र शशि शम्मी जोगेंद्र, और लड़की हुई तो हेमा जया रेखा राखी रीटा बिंदु और इंदु। आज के दौर में लोगों में इतनी तरक्की कर ली है कि बच्चों को नाम ढूंढने पड़ते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये नाम बच्चों के हैं या जानवरों के हैं। देखिए आजकल के बच्चों के नाम इस तरह से हैं, टिंकू रिंकू चिंकू रॉनी बॉनी जैरी सोनी चांदी गोल्ड डायमंड, पता ही नहीं चलता ये नाम है या कुछ और है। मुझे तो ऐसे लगता है आज से और 50 साल के बाद बच्चों के लिए नाम नहीं बचेंगे। लोग अपने बच्चों के लिए नाम ढूंढने के लिए घर से बाहर पड़ेंगे और तब नाम नहीं मिलेंगे तो लोग अपने बच्चों को बीमारियों के हिसाब से नाम देंगे। फोड़ा, फुमसी, मलेरिया, डायबिटीज और कुछ अलग किस्म के लड़के रहेंगे शरारती, तो उनके लिए नाम कैसे होंगे? टीबी, दमा, कफ, इनसे भी हटकर जो लड़के होंगे शरारती, बिल्कुल अलग किस्म के, उनके लिए ज्यादा नाम नहीं होंगे, सिर्फ एक ही नाम होगा, एड्स। हमारी यूपी के सज्जन, जिन्हें हम लोग प्यार से भैया जी कहते हैं, एक भैया जी बंबई में आए, गाय, भैंस और बहुत सारे तबेले हो गए उनके पास और इतनी तरक्की कर ली उन्होंने कि उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। उनकी खास बात ये थी कि वो 10 मिनट में 40 लीटर गाय का दूध निकालते थे, 40 लीटर गाय का दूध निकालते थे। ये बात हमारे भारत सरकार को पता चली, उन्होंने सोचा इनका नाम गिनीज बुक में जाना चाहिए, मगर हमारे पत्रकारों ने कहा ऐसे नहीं, देश के एक एक आदमी को बुलाओ, तबेले में घुसाओ, गाय का दूध निकलवाओ, जो सबसे ज़्यादा दूध निकालेगा उसका नाम गिनीज बुक में डलवाओ। ऐसा हुआ, हर एक को पकड़ के लाया, हर देश के एक एक आदमी को, और उन्हें सभी लोगों को तबेले में डाल दिया। अब देखिए लंदन, फ्रांस, जापान, न्यूयॉर्क, कनाडा, इंग्लैंड, हर देश के एक एक आदमी को निकाल कर तबेले में घुसाया और सभी लोग गाय का दूध निकाल रहे हैं अपने अपने स्टाइल में। किसी ने 10 मिनट में 20 लीटर, किसी ने 40, किसी ने 50 लीटर निकाला, हमारे भैया जी ने सिर्फ 4 लीटर दूध निकाला। घर वाले हैरान परेशान हो गए और भैया जी से बोले, हार क्या आ गया कहा, हियाँ रहा तुम 10 मिनट में 40 लीटर दूध निकालता रहा, वहाँ जाए के 4 लीटर निकाल के हार गया कहा। तो भैया जी बोले, नहीं बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो गया। भले कहा हुआ, नहीं दद्दू कसम खा के बोल रहा हूँ, विद्या कसम, तोहरी कसम खा के बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो गया। भले कहा हुआ, अरे हम रहा इसलिए 4 लीटर तो भी निकाला, तुम होता तो उतना भी नहीं निकाल पाता। भले कहा बात कर रहा है, कहा हुआ, अरे दद्दू कहा बताएं, वही तो बोल रहा हूँ बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो गया, हमको भेजने को तो भेज दिया रहा तबेला का अंदर, अंदर जा के देखता हूँ तो गाय के जगह पे बैल बांधा रहा। एक भैया जी जिन्हें किसी ने एक छोटा सा रेडियो दिया था, जिसे हम पॉकेट रेडियो कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं, पहली बार ट्रांजिस्टर मिलने के बाद भैया जी बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि खुशी के मारे उन्हें पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ, और खुशी के मारे उन्होंने ट्रांजिस्टर ऑन कर दिया, मगर ऑफ करना उन्हें मालूम नहीं था। और उस ट्रांजिस्टर के अंदर एक गाना बज रहा था, गाने के बोल थे, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। भैया जी खुशी के मार के बोल रहे, हमारे गांव का गाना बज रहा है, बचनवा गा रहा है, इलाहाबाद का है, बहुत मस्त गा रहा है। अचानक गाना बंद हो गया, भैया जी को बहुत गुस्सा आया, गुस्से के मारे भैया जी ने रेडियो तोड़ दिया। रेडियो फूटते ही उसमें से जितनी भी बैटरियां थी छटक के बाहर आ गई। भैया जी घबरा गए और घबराहट के मारे बोले, अरे राम रे, ई का गवैये तो भाग गए, अपनी ढोलकिया यहीं छोड़ गए का। वैसे एक दिन मेरी आवाज़ ख़राब हो गई, वैसे डॉक्टर साहब की बातें बता रहा हूँ इसीलिए यह बात मुझे याद आई। एक दिन मेरी आवाज़ ख़राब हो गई और मैं डॉक्टर साहब के पास पहुँचा, डॉक्टर साहब अपनी जगह पर बैठे थे, मैंने डॉक्टर साहब से कहा,
डॉक्टर साहब,
कहिए क्या बात है?
आवाज़ ख़राब हो गई।
अच्छा, आवाज़ ख़राब हो गई, कैसी आवाज़ चाहिए आपको?
अमिताभ बच्चन।
अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब, आपने अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म देखी है?
अग्निपथ देखी है।
अच्छा, अग्निपथ, देखो ये गोलियां खाओ। हाँ, अब देखो मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, उसके बाद तुम बोलना। अब डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अमिताभ साहब का अंदाज मेरे सामने किस तरह से पेश किया, डॉक्टर साहब बोले,
ए, क्या दिखता है, पहचाना अपन को, अपन विजय दीनानाथ जान, विजय दीनानाथ जान।
तुम बोलो। मैंने कहा,
क्या देखता है, पहचाना क्या?
डॉक्टर साहब ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, ये मैं बाकी की गोलियां देता हूँ, एक हफ्ते के बाद मेरे पास आना। गोलियां लेकर मैं डॉक्टर साहब के पास से निकल गया और एक हफ्ते के बाद मैं डॉक्टर साहब के पास पहुँचा, डॉक्टर साहब को देखते ही कहा,
क्या डॉक्टर साहब, पहचाना अपन को, अपन फिर आ गया तुम्हारे पास,
डॉक्टर साहब ने मुझे देखते ही कहा,
आ बेटा बैठ।
एक साहब थे, हमेशा शराब पीते थे, अपने बीवी को मारते थे, हमेशा उनके घर में झगड़ा होता था, दंगे फसाद होते थे, हर रोज रात को पी कर आते थे और अपनी बीवी को मारते थे। एक बार मैंने देखा कि उनके घर में बहुत खामोशी छाई थी, बिल्कुल शांत हो चुका था, कोई आवाज़ नहीं, कोई दंगा नहीं। लोग हैरान थे, परेशान थे, सभी लोग सुबह उनसे मिलने को गए, देखा तो ये साहब शराब पीकर धुत थे, सामने उनकी बीवी मरी पड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा, क्यों क्या हुआ, बीवी मर गई क्या?
अरे मर गया, मरने दो ना।
बोले मर गई?
अरे मर गया, अभी मैं क्या करूं।
बोले कुछ दवा दारू नहीं की?
अरे दारू पी के दवा किया, इसके लिए तो मर गई।
मैंने देखा एक ऑफिस के बाहर एक नेपाली खड़ा था, जो दौड़ता दौड़ता अपने साहब के कैबिन में घुसा और साहब से बोला,
वो साहब शीरे के पास से मर गया।
साहब ने कहा, क्या बकते हो, इस एरिया में कोई बादशाहत नहीं, कोई बादशाह नहीं तो बादशाह मरेगा कैसा?
वो साहब हम सची बोलते हैं, हमने देखा वो शीरे के पास से मर गया।
साहब ने कहा, एक मिनट रुको। बगल के कैबिन से और एक नेपाली को बुलाया, जो अच्छा खासा लिखा पड़ा था, उससे पूछा, वो क्या कह रहा है सुनो और हमको बताओ। तो उसने पूछा, क्या हुआ?
बोला साहब मैं सुबह सुबह उधर खड़ा मैंने देखा वो शीरे के पास से मर गया।
क्या बोल रहा है? साहब वो बोल रहा है, वो बाहर खड़ा था, उसने देखा चिड़िया का बच्चा मर गया। वैसे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। ऐसे सोचना है, अगर इलेक्शन लड़ने के लिए तमाम फिल्म स्टार्स खड़े हो जाएं, तो वो तकरीर यानी भाषण किस तरह से करेंगे? यहाँ पर दिलीप कुमार साहब खड़े हैं और इनके अपोजिशन में राजकुमार साहब खड़े हैं। देखिए सबसे पहले दिलीप कुमार किस तरह से भाषण देते हैं। दिलीप कुमार,
मेरी आवाज़ को सुनने वाले तमाम दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार, आदर। प्यारे भाइयों, आप जानते हैं आज हमारे देश की हालत क्या है,
बच बदतर होती जा रही है, बच बदतर होती जा रही है। ये शादी पे शादी, बच्चे पे बच्चे, ये शादी पे शादी, बच्चे पे बच्चे।
और ऐसे वक्त मैं एक ऐसा हूँ जो आपको इस गरीबी से निकाल सकता हूँ। मैं आप लोगों को जिंदगी के आईने की तल्ख रिश्तों की हकीकत दिखाना चाहता हूँ।
और वैसे मेरा निशान है मशाल,
मशाल की इस रोशनी से मैं आप लोगों को बाहर लाना चाहता हूँ। वैसे मेरे अपोजिशन में कोई राजकुमार नाम का शख्स खड़ा है, बड़ा बदबख्त इंसान है, बड़ा कमजोर है, कभी उसे चुनकर नहीं लाना आप, ना कभी चुनकर नहीं लाना। याद रहे दोस्तों, आने वाली 25 तारीख, आने वाली 25 तारीख को मैं इस इलेक्शन में खड़ा हूँ और मेरा निशान है मशाल, जिसे आप लोग जिताएंगे। और याद रहे, आज रात के खाने का इंतज़ाम मैंने यहीं पर किया है, आप लोग खाना खा कर जाइए। जय राम जी।
राजकुमार साहब किस तरह से तकरीर करते हैं? राजकुमार
यानी हम राजकुमार हैं, हम इतिहास लिखते नहीं बल्कि इतिहास बनाते हैं। और रही बात जीतने की, तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। याद रहे, आने वाली 25 तारीख को हम इलेक्शन में खड़े हैं, बस आपको यही करना है, हमें जिताना है। और हमारी निशानी है मफलर, वो मफलर जो आपको ठंडी से राहत दिलाता है, सर्दी से बचाता है, वो जो सामने खड़ा है अपने आप को दिलीप कुमार कहता है, और जिसकी निशानी मशाल है, जो आप लोगों को बचा नहीं सकता बल्कि आप लोगों को जलाने की कोशिश कर रहा है, वो आप लोगों की मदद क्या करेगा? याद रहे, मैं यानी राजकुमार, मेरी निशानी मफलर, आप लोग मुझे जिताइए, मैं उन लोगों को मफलर दूंगा जिन्हें ठंडी लगती है,
और उन लोगों को वो चीज दूंगा जिनके सर पे बाल नहीं। वो मेरे पास है, वो है विग।
यहां पर खड़े हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब और इनके अपोजिशन में खड़े हैं फिल्म स्टार शक्ति कपूर। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब किस तरह से भाषण देते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा।
मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़ों, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया और मैं भी आ गया। माना कि ये इलेक्शन नया है लेकिन मैं खिलाड़ी बहुत पुराना हूं। मुझे अभी अभी इस बात का पता चला है कि मेरे अपोजिशन में कोई शक्ति कपूर खड़ा है, लेकिन वो अपनी सारी शक्ति लगाकर भी मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरी निशानी है रिवॉल्वर रिवॉल्वर रिवॉल्वर। जाने इस रिवॉल्वर को चुनकर लाना, वरना कसम भवानी की इस रिवॉल्वर की छह गोलियां मैं आप सबके सीने में गाड़ दूंगा। वह सब मेरी निशानी है रिवॉल्वर, और जाने में जान लेने में कभी डरता नहीं रहे। अगर आप लोगों ने मुझे चुनकर लाया नहीं तो कसम भवानी की मैं क्या से क्या कर दूंगा। अगर आपने मुझे जिताया तो मैं कसम खा के कहता हूं कि हर एक को माला माल कर दूंगा। याद रहे, आप लोगों ने शत्रु की शत्रुता देखी है, दोस्ताना नहीं देखा। मैं जा रहा हूं, कसम से गुड बाय।
यहां पर शक्ति कपूर साहब खड़े हैं, वो कहते हैं,
मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों का नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा छोटा सा नेता शक्ति कपूर। आओ दोस्तों, यह शत्रुघ्न सिन्हा बहुत चालू आदमी है। मुझे बोला मेरे अपोजिशन में खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अब वो मुझे खड़ा करने के बजाय बिठाने की कोशिश कर रहा है। आओ, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं। आओ, आने वाली 25 तारीख को होने वाला इलेक्शन में जब तक मैं जीत नहीं जाता मैं बैठूंगा नहीं, और मैं आप लोगों को भी बैठना नहीं दूंगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी निशानी है नल, बगैर पानी का नल। आप मेरे नल पे सिक्का मारिए, मैं आप लोगों को बगैर पानी के नल से पानी दूंगा। आओ।